छंद 20। देखो बंधुवर, सामने स्थित जो वह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है। इसकी मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु दश दिक समस्त है हस्त। और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। प्रसंग। राम के द्वारा यह बताने पर कि अब इस युद्ध में देवी रावण की सहायता कर रही हैं, सब लोग व्याकुल हो गए, किंतु जांबवंत स्थिर चित रहे। उन्होंने राम को सुझाव दिया कि तुम्हें पूजा का उत्तर पूजा से देना चाहिए। यदि रावण शक्ति को प्रसन्न करके तुम्हें त्रस्त कर रहे हैं तो तुम निश्चय ही देवी को प्रसन्न करके रावण को पराजित कर सकोगे। हे राम, तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो तथा तब तक के लिए युद्ध से विरत हो जाओ। तब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त न हो तब तक लक्ष्मण से के सेनापतित्व में हम लोग युद्ध लड़ेंगे। सब लोग ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए देवी की पूजा प्रारंभ कर दी। इन पंक्तियों में कवि ने राम के द्वारा की गई शक्ति की उसी मौलिक कल्पना का वर्णन किया है। व्याख्या। राम सबको संबोधित करते हुए कहने लगे कि भलनाथ, जांबवंत का यह सुझाव अत्यंत उत्तम है। मैंने शक्ति की मौलिक कल्पना इस रूप में की है। हे बंधुओं, सामने स्थित जो वह पर्वत है मैंने इसी को पार्वती देवी मान लिया है। यह हरी भरी लताओं पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से युक्त होकर श्यामल एवं सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके चरणों पर गर्जना करता हुआ समुद्र ही मैंने सिंह मान लिया है। इसमें झरता हुआ फूलों का मकरंद ही बिंदु अर्थात स्त्री तत्व के रूप में मैंने कल्पित किया है। दशों दिशाओं की देवी के 10 हाथ में तथा हाथ हैं तथा ऊपर आकाश को मैंने दिगंबर शिव के रूप में कल्पित किया है। देवी के इस विराट रूप की कल्पना से तथा इस मांगलिक भाव से मानव के मन में विद्यमान आसुरी प्रवृत्तियां सहज ही शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो जाती है। राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना की है। विशेष पॉइंट 1, राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना की है। पॉइंट 2, निराला का कथन यह है कि शक्ति का अनुकरण नहीं किया जा सकता। हर युग में देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है। वर्तमान समय में एकता अर्थात संघ में शक्ति है। जिस शक्ति से किसी एक को सफलता मिली है आवश्यक नहीं कि उसी शक्ति से कोई दूसरा भी सफल हो जाए। शक्ति की मौलिक कल्पना से ही व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। पॉइंट 3, पर्वत में पार्वती की कल्पना इसलिए उचित है क्योंकि पार्वती पर्वत पुत्री शैल पुत्री कही जाती है। पॉइंट 4, उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य सर्वत्र है। पॉइंट 5, गरजता सिंधु में अपहुन्नति अलंकार एवं उत्प्रेक्षा है। पॉइंट 6, अंबर दिगंबर में सभंग पद यमक है। पॉइंट 7, मन का असुर में रूपक है। पॉइंट 8, लाक्षणिक भाषा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। छंद 21, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देवी देह उषह काल होते सत्वर तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जांबवान से पथ दुरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले धर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। प्रसंग, जामवंत के सुझाव पर राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए शक्ति पूजा का निश्चय किया और हनुमान से कहा कि वे देवी कुंड जाकर 108 नील कमल प्रातः काल होते ही ले आवे। हनुमान तुरंत ही प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। व्याख्या, शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए राम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना करने का निश्चय किया और तत्पश्चात हनुमान की ओर मधुर दृष्टि डालकर कहा कि हे हनुमान, मुझे 108 नील कमलों की आवश्यकता है, कम से कम 108 और यदि अधिक हो तो और अच्छा। तुम प्रातः काल होते ही देवी कुंड जाओ, उन कमलों को तोड़ो, यहाँ लाओ, तत्पश्चात युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध करो। हनुमान ने मंत्री वर जामवंत से देवी कुंड की स्थिति, दूरी एवं रास्ते की जानकारी प्राप्त की और प्रभु के चरण धूलि माथे से लगाकर हर्षित होकर वे देवी कुंड की ओर चल पड़े। रात अधिक हो गई थी, अतः राम ने सबको विदा किया। सब लोग राम की विजय के बारे में सोचते हुए अपने शिविर की ओर चल पड़े। विशेष पॉइंट 1, हनुमान राम के सेवक हैं। राम दुरूह कार्य के लिए हनुमान से ही कहते हैं क्योंकि वे उनके क्षमताओं से परिचित हैं। पॉइंट 2, जांबवंत मंत्री है, उन्हें सब बातों की जानकारी है, इसलिए हनुमान ने उनसे ही देवी कुंड के बारे में पूछा है। पॉइंट 3, भावानुकूल सरल भाषा का प्रयोग इस अवतरण में है। छंद 22, निशी हुए विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृघ महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तुनीर स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंह नाद रन कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजा पूजो प्रांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहन होने लगा समाराधन। प्रसंग, जामवंत के सुझाव पर राम ने शक्ति पूजा आरंभ की। आज वे युद्ध वेश में न होकर साधक के वेश में हैं तथा पूजा के उपरांत देवी का नाम जप कर रहे हैं। दिन भर नाम जप करने के बाद उनका मन इष्ट देवी के चरणों में स्थिर हो गया। इन पंक्तियों में निराला जी ने इसी वृत्तांत का वर्णन किया है। व्याख्या, रात समाप्त हो गई और आकाश के मस्तक पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई पड़ने लगी। भाव यह है कि राम की निराशा समाप्त हो गई तथा आशा की एक किरण उनकी आंखों में चमकने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल होते ही राम युद्ध की वेशभूषा में सुशोभित होते थे, किंतु आज वे सिद्धि प्राप्त करने हेतु साधक मुद्रा में हैं। उनके हाथ में न तो धनुष बाण है और न ही कंधे पर तरकश है। प्रतिदिन की भांति घने जटाओं को कसकर बांधा हुआ मुकुट भी उनके सिर पर दिखाई नहीं दे रहा। युद्ध क्षेत्र से वीरों की गर्जना के स्वर तथा अपार कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, किंतु इन आवाजों को सुनकर उनका मन युद्ध के भावों से युक्त नहीं होता। वे अपने ध्यान में देवी को धारण किए हुए हैं, अतः युद्ध की ओर उनका मन नहीं लगता। पूजा के उपरांत वे दश भुजाओं वाली दुर्गा का नाम जप करते हैं और मन ही मन उन नामों से जुड़े गुणों का स्मरण कर रहे हैं। वह दिन इसी प्रकार नाम जप करते हुए बीता और उनका मन देवी के चरणों में स्थिर हो गया। धीरे धीरे उनकी आराधना गहन से गहनतर होती गई। विशेष पॉइंट वन, छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। यहाँ निशी अर्थात रात्रि निराशा का प्रतीक है और किरण आशा का प्रतीक है। पॉइंट टू, मन मनन में सभंग पद यमक अलंकार है। पॉइंट थ्री, नवधा भक्ति में चिंतन मनन नाम जप आदि का समावेश होता है। पॉइंट फोर, संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली का प्रयोग राम की शक्ति पूजा में किया गया है। पॉइंट फाइव, राम के लिए सुधी का प्रयोग उनकी विवेकशीलता एवं बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। पॉइंट सिक्स, सिंहनाद का लाक्षणिक अर्थ है वीरों की गर्जना। पॉइंट सेवन, लाक्षणिक पदावली प्रतीकात्मक शैली प्रयुक्त है। छंद तेईस, क्रम से हुए पार पार राघव के पंच दिवस चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर निज पुष्ट चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। प्रसंग, देवी रावण की सहायता कर रही थीं, इसलिए राम रावण को पराजित नहीं कर पा रहे थे। राम की निराशा को दूर करते हुए जांबवंत ने राम को यह सुझाव दिया कि आप शक्ति की मौलिक कल्पना करें और शक्ति की पूजा करके रावण पर विजय श्री का वर प्राप्त करें। राम ने जांबवंत का सुझाव स्वीकार करके शक्ति की पूजा योग्य विधि से करने का निश्चय किया। वे युद्ध से विलग होकर साधना में रत हो गए। दो दिन तक आसन पर निस्पंद बैठे रहे और देवी के विभिन्न नामों का जाप करते रहे। तदुपरांत उनका मन स्थिर हो गया और उनका मन एक एक करके विभिन्न चक्रों को पार करता गया। इस अवतरण में इसी वृतांत का वर्णन है। व्याख्या, राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना की और वे योग साधना की विविध से शक्ति की आराधना करने लगे। उनका मन जब इष्ट के चरणों में स्थिर हो गया तो ध्यान एकाग्र हो गया और एकाएक करके पूजा में रत राम के पांच दिन व्यतीत हो गए। इन पांच दिनों में उनकी कुंडलिनी धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक चक्र को पार करती हुई ऊपर चढ़ती गई। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत और विशुद्ध इन पांच चक्रों को पार करती हुई उनकी कुंडलिनी छठवें चक्र आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर हो रही थी। इस अवस्था में उनका मन पूर्णतः क्रियाशील हो गया और आलस्य रहित हो गया। राम एक योगी की भांति निस्पंद बैठे हुए हाथ में हाथ की माला का जाप पूरा करते थे और जब पूरा हो जाता था तो उन नील कमलों में से एक कमल उठाकर देवी पर चढ़ा देते थे जो उन्होंने पूजा के लिए हनुमान जी से मंगवाए थे। इस प्रकार वे अपने अनुष्ठान को पूरा कर रहे थे। विशेष पॉइंट वन, राम शक्ति की आराधना योग की विधि से कर रहे हैं। राम का तात्पर्य योग साधना में कुंडलिनी योग में बताए गए चक्रों से है। कुंडलिनी योग में छह चक्र बताए गए हैं, मूलाधार स्वधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा। पॉइंट थ्री, कर जप पूरा कर में कर शब्द में यमक अलंकार है। क्योंकि एक कर का अर्थ है हाथ, दूसरे कर का अर्थ है करके। पॉइंट 4, यहाँ जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह 24 मात्राओं का एक तुकांत छंद है और इसे शक्ति पूजा छंद कहा जाता है। पॉइंट 5, राम की शक्ति पूजा पर देवी भागवत एवं बंगला भाषा में रचित कृतवास रामायण का प्रभाव परिलक्षित होता है। पॉइंट 6, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। छंद 24, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिचखिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल, देवी पद पर जप कर के स्वर लगा कापने थर थर अंबर, दो दिन से निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। प्रसंग, योग विधि से शक्ति की आराधना करते हुए राम ने धीरे धीरे षट चक्रों का भेदन कर लिया। वे दो दिनों तक उसी आसन पर निस्पंद बैठे रहे और दुर्गा का नाम जाप करते हुए नीलकमल अर्पित करते रहे। व्याख्या, पांचों चक्रों का भेदन के उपरांत छठवें दिन राम का मन आज्ञा नामक षष्ठ चक्र पर केंद्रित हो गया। आज्ञा चक्र पर जब उनका मन एकाग्र हुआ तब प्रत्येक जप से महान आकर्षण होने लगा। इस समय राम का ध्यान त्रिकुटी पर केंद्रित था और कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके नेत्र देवी के चरणों पर केंद्रित थे। इस अवस्था में राम देवी के नाम का उच्चारण करते हुए जो जाप कर रहे थे उस जप के स्वर से आकाश कंपायमान होने लगा। राम दो दिनों तक स्थिर होकर एक ही आसन पर बैठे रहे। वे देवी के नाम जप करते हुए नीलकमल चढ़ा रहे थे। विशेष पॉइंट 1, योग के पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग यहाँ किया गया है। आज्ञा, त्रिकुटी, आसन आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। पॉइंट 2, राम एक योगी के रूप में शक्ति की पूजा कर रहे हैं। पॉइंट 3, नाम जप से मन एकाग्र होता है, अतः राम ने इसी विधि को यहाँ अपनाया है। पॉइंट 4, द्विदल में रूपकातिशयोक्ति है क्योंकि केवल उपमान का उल्लेख है। पॉइंट 5, संस्कृत निष्ठ पदावली है। राम की शक्ति पूजा की भाषा विषय एवं प्रसंग के अनुकूल परिवर्तित होती दिखाई पड़ती है। छंद 25, आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया, अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर हो गया, विजित ब्रह्मांड पूरे देवता स्तब्ध हो गए, दग्ध जीवन के तप के समारब्ध रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार प्रायः करने को हुआ दुर्ग को सहरसार, द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। प्रसंग, राम योगी के रूप में शक्ति की पूजा कर रहे थे। क्रम क्रम में षट चक्रों को पार करती हुई उनकी कुंडलिनी जब अपने अंतिम गंतव्य सहस्रार पर पहुंचने ही वाली थी और उनका अनुष्ठान लगभग समाप्ति पर था, तभी देवी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह देवी चुपचाप उस एक नील कमल को उठा ले गए जो शेष बचा था और अंतिम जप के उपरांत देवी पर अर्पित किया जाने वाला था। इन पंक्तियों में निराला जी ने इसी वृतांत का वर्णन किया है। राम की साधना का यह आठवां दिन था। उनका मन पूर्णता देवी के ध्यान में डूबा हुआ था और निरंतर ऊर्ध्वगामी था। अब वह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्तर को भी पार कर गया था। उन्होंने अपनी साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने जीत लिया था। देवता उनकी इस विलक्षण आराधना एवं उपलब्धि को देखकर स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने पूजा के लिए जो 108 नील कमल मंगवाए थे, उनमें से केवल एक ही नील कमल ही शेष बचा था। शेष वे देवी पर अर्पित कर चुके थे। भाव यह है कि उनका अंतिम जप था और उनका अनुष्ठान लगभग पूरा होने को था। उनका मन संसार के बंधनों से छूटकर उस सहसार को चक्र को पार करने ही वाला था, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, अर्थात उनकी साधना अंतिम चरण पर थी। उस समय रात्रि दोपहर प्रहर बीत चुकी थी। तभी देवी दुर्गा ने यह निश्चय किया कि मुझे राम की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर दुर्गा साक्षात प्रकट हुई और राम की आंख बचाकर पूजा में अर्पित किया जाने वाला वह नील कमल हंसती हुई उठा ले गई जो शेष बचा था। विशेष पॉइंट 1, राम की आराधना अंतिम चरण में थी। इस समय पड़ने वाले विघ्न से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। देखें राम क्या करते हैं। इसी बात की परीक्षा करने हेतु देवी वह नील कमल उठा ले गए, किंतु यहाँ हंस उठा ले गई का प्रयोग यह सूचित करता है कि देवी दुर्गा विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहती थी, केवल उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हैं। पॉइंट 2, राम की पूजा उस स्तर को भी पार कर गई जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का स्तर है। यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। पॉइंट 3, साधना के बल पर प्रारब्ध को बदला जा सकता है। यह बात यहाँ इस पंक्ति से ध्वनित हो रही है। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। पॉइंट 4, सहस्रार योग का परिभाषिक शब्द है। यह कुंडलिनी का अंतिम गंतव्य है। यहाँ पहुँचने पर योगी को अनहतनाद सुनाई पड़ता है और यहाँ अमृत झरा करता है। पॉइंट 5, दुर्गा का अभिप्राय यहाँ किला नहीं है, अपितु दुर्ग का शाब्दिक अर्थ दुह प्लस ग अर्थात जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके लिया गया है। सहस्रार तक पहुँचना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे सहस्रार का विशेषण बनाया गया है। पॉइंट 6, भाषा विषय एवं प्रसंग के अनुकूल है। पॉइंट 7, शक्ति पूजा छंद का प्रयोग किया गया है। छंद 26, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वार। प्रसंग, देवी ने राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वह हंसते हुए पूजा के लिए शेष एक नील कमल को उठा ले गई। राम ने जब उस नील कमल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उनका ध्यान भंग हुआ, नेत्र खुल गए और उन्हें वह स्थान खाली दिखाई पड़ा जहाँ कमल रखा था। उन्हें लगा कि अब सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और इस आशंका से वे विचलित हो गए। इन पंक्तियों में इसी वृत्तांत का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या, राम इस समय अपने अनुष्ठान के अंतिम चरण पर पहुंच गए थे। केवल अंतिम जप शेष था। रावण ने अंतिम जप प्रारंभ किया। उनका ध्यान देवी के दोनों चरणों पर केंद्रित था। जप पूरा होने के बाद नील कमल चढ़ाने के लिए उन्होंने अभ्यासवश जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अचानक ही उनका मन, जो इस योग विधि से की जाने वाली पूजा में बिल्कुल शांत एवं स्थिर हो गया था, चंचल हो उठा। उनका ध्यान भंग हो गया और जब उन्होंने वास्तविकता जानने के लिए अपनी पलकों को खोला तो उन्हें वह स्थान बिल्कुल खाली दिखाई पड़ा जहां नीलकमल रखा हुआ था। यह उनके अनुष्ठान के पूर्ण होने का समय था। इस समय यदि वे दूसरे नीलकमल प्राप्त करने के लिए अपना आसन छोड़ते हैं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर राम अत्यंत दुखी हो गए और सिद्धि प्राप्त न होने की आशंका के कारण उनके दोनों नेत्रों में आंसू झलक आए। विशेष पॉइंट वन, निराला के राम की शक्ति पूजा के चरित्र नायक राम तुलसी के राम से भिन्न हैं। वे एक सामान्य मानव हैं जो अपनी सफलताओं आशंकाओं से निराश होते हैं और दुख के अवसर पर आंखों में आंसू भी भर लाते हैं। पॉइंट टू, राम को आशंका है कि अब सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और फिर रावण पर विजय श्री भी नहीं मिल सकेगा, इसलिए उनकी आंखों में आंसू भर गए हैं। पॉइंट थ्री, कुछ लगा न हाथ मुहावरा है, कुछ भी हाथ न लगना अर्थात कुछ भी प्राप्त न होना। पॉइंट फोर, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट फाइव, संपूर्ण कविता में 24 मात्राओं का तुकांत छंद है जिसे शक्ति पूजा छंद कहा जाता है। पॉइंट छंद 27, धिक जीवन जो पता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सुजग एवं भाव प्रमन। प्रसंग, देवी के द्वारा कमल चुरा लिए जाने से राम को अपनी सिद्धि में बाधा पड़ती प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि अब मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि मैं अपने अनुष्ठान को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। वे निराश होकर अपने को ही धिक्कारने लगे और सोचने लगे कि अब सीता की मुक्ति संभव नहीं है। किंतु तभी राम को वह एक पुरानी स्मृति जगी, उन्हें उपाय मिल गया और उन्होंने अपने एक नेत्र को चढ़ाने का निश्चय कर लिया। इन पंक्तियों में इसी वृतांत का वर्णन है। व्याख्या, देवी के द्वारा राम की परीक्षा के लिए चुराए गए कमल के कारण राम निराश हो गए और स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जिसे सदैव विरोध ही प्राप्त होता रहा है, उन साधनों को धिक्कार है जिनकी शोध में निरंतर मैं तल्लीन बना रहा, किंतु कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि मैं साधन संपन्न बनकर अपने साध्य को प्राप्त कर पाता। मेरा जीवन तो साधनों की खोज में ही लगा रहा। ऐसा सुअवसर मुझे कभी नहीं मिला कि मैं उन साधनों का उपयोग अपने जीवन को सुखी बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता। राम के द्वारा कही गई इन पंक्तियों के माध्यम से निराला अपने व्यक्तित्व जीवन संघर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। निराला जी को अपने जीवन में निरंतर विरोध झेलने पड़े। परिवार, समाज, प्रकाशक, आलोचक सबने उनका मुखर विरोध किया। परिणामतः वे निरंतर जीवन संघर्ष से जूझते रहे। जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने हेतु वे निरंतर संघर्ष करते रहे किंतु अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम की व्यथा निराला की अपनी व्यथा बन गई है और यह धिक्कार राम अपने को ही नहीं दे रहे अपितु निराला भी स्वयं को धिक्कार रहे हैं। अस्तु राम कहने लगे, अब मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी और मैं रावण पर विजय भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अतः अब प्रिया सीता की मुक्ति भी नहीं हो सकेगी। जब इस प्रकार वे निराशा की अभिव्यक्ति कर रहे थे और अत्यंत दुखी हो रहे थे, तभी उनका एक और मन जो इस सामान्य मन से परे है, जिसने कभी निराशा अवसाद का अनुभव न किया और जो न तो दीनता का अनुभव करता है और न किसी के समक्ष झुकना ही जानता था, कोई उपाय खोजने में संलग्न हो गया। भाव यह है कि व्यक्ति निराशा एवं अवसाद के क्षणों में जब हताश हो जाता है, तब उसके ही मन का एक दूसरा पक्ष उसे धैर्य बंधाता है, उसे उस मुश्किल से निकलने का रास्ता सुझाता है। राम के मन का वह दूसरा स्तर सक्रिय हो गया और माया के आवरण को भेदता हुआ वह बुद्धि के दुर्ग में पहुंच गया। भाव यह है कि राम की बुद्धि सक्रिय हो गई, उन्होंने विचार करना प्रारंभ कर दिया। बिजली जैसी तीव्र गति से विचार करते हुए उस मन में एक पुरानी स्मृति कौंध गई। राम को सहसा ही उस पुराने याद से एक मार्ग मिल गया जो उन्हें इस कठिनाई से उबार सकता था। वे उपाय खोजकर प्रसन्न हो गए। विशेष पॉइंट 1, कवि के व्यक्तिगत जीवन का सत्य इन पंक्तियों में उद्घाटित हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि कवि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने व्यक्तिगत जीवन को काव्य में व्यक्त करता है। पॉइंट 2, यहाँ मन के जिन दो भेदों की चर्चा की गई है, उन्हें मनोविज्ञान में ऊपरी मन और बुद्धि मन के ऊपर के रूप में जाना जाता है। सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का बुद्धि मनस जागरूक होकर उन्हें कठिनाइयों से निकलने में निरंतर सहयोग देता रहता है। पॉइंट 3, सामान्य मन चंचल स्वभाव वाला है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक है, जबकि बुद्धि मनस संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का होने से स्थिर स्वभाव वाला है। जब बुद्धि मनस सक्रिय होता है, तब व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। निराला यहाँ यही कहना चाहते हैं, बुद्धि के दुर्ग में रूपक अलंकार है। पॉइंट 4, बुद्धि के दुर्ग में रूपक अलंकार है। पॉइंट 5, विद्युत गति में उदाहरण अलंकार है। पॉइंट 6, विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। 28, छंद 28, यह है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, कहकर देखा तुनीर ब्रह्म शर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित कर करने को उद्यत हो गए सुमन। प्रसंग, राम को यह याद हो आया कि उनकी माता उन्हें कमल जैसे नेत्रों वाला कहती थी, अर्थात अभी उनके पास नेत्रों के रूप में दो कमल शेष हैं। इनमें से एक नेत्र चढ़ाकर अपना अनुष्ठान पूरा करूंगा। इस निश्चय के साथ वे ब्रह्मास्त्र हाथ में लेकर नेत्र निकाल कर चढ़ाने को तत्पर हो गए। इस अवतरण में कवि ने इसी वृत्तांत का वर्णन किया है। व्याख्या, राम को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वे मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए कहने लगे, उपाय मिल गया, अब मेरा अनुष्ठान अवश्य पूरा हो जाएगा। उन्हें एक पुरानी बात याद हो आई कि मेरी माता मुझे कमल जैसे नेत्रों वाला कहा करती थी। इस प्रकार मेरे पास तो नेत्र के रूप में दो नील कमल अभी भी शेष हैं। देवी माँ, मैं इनमें से एक नेत्र रूपी कमल आपको अर्पित करके इस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने तरकश की ओर देखा जिसमें ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। उन्होंने वह चमकता हुआ बाण अपने हाथ में ले लिया। बाएं हाथ में बाण लेकर दाहिने हाथ से दायां नेत्र पकड़ा और नेत्र रूपी कमल पुष्प को अर्पित करने के लिए वे सहर्ष तैयार हो गए। विशेष पॉइंट वन, कह उठे राम जो मंद्रित घन में उदाहरण अलंकार है क्योंकि यहाँ क्रिया साम्य है। पॉइंट टू, यहाँ राजीव और इंदी वर्ग को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करके एक भूल कर दी गई है। वस्तुतः राजीव लाल कमल को कहते हैं जबकि इंदी वर नील कमल को कहा जाता है। पॉइंट थ्री, लकलक में पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ दृश्य बिंब भी है। पॉइंट फोर, सुमन में शेष के साथ साथ नेत्र रूपी पुष्प अर्थ लेने से रूपकातिशोक्ति भी है। श्लेष इसलिए है क्योंकि इसके दो अर्थ हैं, प्रसन्न मन और पुष्प। पॉइंट फाइव, भावानुकूल भाषा का प्रयोग है। पॉइंट सिक्स, राम देवी के भक्त हैं अतः नेत्र चढ़ाने को भी तत्पर हो गए हैं। छंद 29, जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। प्रसंग, राम देवी पर अपना नेत्र चढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने बाण से अपना नेत्र निकालने के लिए जैसे ही बाण हाथ में लिया देवी प्रकट हो गईं और उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया। इस अवतरण में इसी वृत्तांत को प्रकट किया गया है। व्याख्या, जैसे ही राम के मन में यह निश्चय दृढ़ हो गया कि मैं अपना नेत्र अर्पित करके यह अनुष्ठान पूरा करूँगा, उसी क्षण राम की इस धारणा को जानकर ब्रह्मांड कांपने लगा। देवी तुरंत ही प्रकट हो गईं और यह कहते हुए उन्होंने राम का हाथ थाम लिया कि हे राम, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम धैर्यवान साधक हो और धर्म रूपी धन से युक्त हो। राम को साधुवाद देते हुए, उनकी दृढ़ता धीरता की प्रशंसा करते हुए देवी ने राम को का वह हाथ थाम लिया जो नेत्र निकालने के लिए उद्यत हो गया था। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा संपन्न हुई। शक्ति ने स्वयं उनका हाथ थाम लिया है, अतः जब अब रावण पर विजय पाना कोई कठिन कार्य नहीं, वे परीक्षा में खरे उतरे। पॉइंट विशेष पॉइंट वन, देवी राम के धैर्य की परीक्षा लेना चाहती थी। इस परीक्षा में राम सफल हुए। पॉइंट टू, दृढ़ निश्चय व्यक्ति कैसी भी बाधा आ जाने पर अपने निश्चय से डिगते नहीं हैं। वे धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अंततः अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। पॉइंट थ्री, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम में देवी ने राम का हाथ पकड़ लिया। इसका अभिधेयार्थ तो यही है कि देवी ने राम को नेत्र निकालने से वर्जित कर दिया, किंतु इसका लक्ष्यार्थ यह है कि देवी ने राम को अवलंब प्रदान किया। पॉइंट फोर, हाथ थाम लेना अर्थात मुहावरा भी है, अर्थ है सहारा देना। पॉइंट फाइव, राम देवी के भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना आराध्य का प्रथम कर्तव्य है। देवी ने राम के योग क्षेम की रक्षा करके अपनी इसी कर्तव्य का पालन किया है। पॉइंट सिक्स, साधु साधु में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पॉइंट सेवन, धर्म धन में रूपक अलंकार है। शक्ति पूजा छंद खड़ी बोली का प्रयोग भी है। छंद 30, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुए विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भार, श्री राघव एवं प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इन पंक्तियों में दुर्गा के रूप का वर्णन किया गया है। देवी के हाथों में विविध अस्त्र सज्जित थे, मुख पर मंद मुस्कान थी, राम उनके चरणों पर श्रद्धावंत हो गए और देवी राम को विजय का वरदान देती हुई उनके मुख में समा गई। व्याख्या: राम ने देखा उनके सामने दुर्गा साक्षात प्रकट होकर अपनी आभा विकीर्ण कर रही हैं। उनका बायां पैर महिषासुर के कंधे पर था और दायां पैर सिंह देवी का वाहन पर रखा था। उनका रूप ज्योतिर्मय था। देवी के दसों हाथ विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान व्याप्त थी, जिसे देखकर संपूर्ण शक्ति की शोभा भी लज्जित हो रही थी। भाव यह है कि वह मुस्कान अत्यंत शोभायुक्त लग रही थी। उनके दाहिने और लक्ष्मी और बाईं ओर सरस्वती विद्यमान थी। दाहिने गोद में पुत्र गणेश और बाएं गोद में युद्धोन्माद में रथ श्री कार्तिकेय थे। तथा मस्तक पर शंकर जी विद्यमान थे। देवी के इस स्वरूप को देखकर राम श्रद्धावनत होकर उनके चरण कमलों में झुक गए और मंद मंद स्वर में देवी की वंदना करने लगे। देवी यह कहते हुए राम के मुख शरीर में समा गई कि हे नवीन पुरुषोत्तम राम, तुम्हारी जय होगी और तुम रावण पर निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। विशेष पॉइंट 1, निराला ने यहाँ जिस शक्ति का उल्लेख किया है वह शक्ति का सात्विक रूप है। राम ने शक्ति के इसी सात्विक रूप की उपासना की है जो दुर्गा कही जाती है। शक्ति का एक अन्य रूप है तामसी शक्ति। रावण जैसे दुष्ट इसी तामसी शक्ति अर्थात काली को अपने अधिकार में कर लेते हैं। दुष्ट अपने तामसिक शक्ति के बल पर ही सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं। पॉइंट 2, राम की शक्ति पूजा वस्तुतः राम रावण के संघर्ष की कथा नहीं है, अपितु यह बुराई पर अच्छाई की विजय की गाथा है। रावण असत और तमस का प्रतीक है, जबकि राम सत पक्ष के प्रतीक हैं। पॉइंट 3, देवी के स्वरूप का जो वर्णन यहाँ किया गया है वह हमारी पौराणिक मान्यता के अनुरूप है। दुर्गा सप्तशती में देवी के इसी रूप का वर्णन किया गया है। पॉइंट 4, हुई विश्व की श्री लज्जित में प्रतीप अलंकार है। पॉइंट 5, पद पद्मों में उपमा अलंकार एवं छेकानुप्रास अलंकार है। पॉइंट 6, राम देवी के भक्त हैं और भक्त की ही भांति देवी की वंदना कर रहे हैं। पॉइंट 7, शक्ति पूजा छंद है। पॉइंट 8, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। लघु उत्तरी प्रश्न: राम की शक्ति पूजा की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित हुआ है। राम आंसर: राम की शक्ति पूजा में एक स्थान पर जहां राम की साधना पूरी होने को है वहां देवी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक नील कमल चुरा ले गईं। उस समय राम ने निराश होकर जो शब्द कहे उनमें कवि निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित हुआ है। ये शब्द इस प्रकार है: धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कवि स्वयं को कभी धिक्कारता है जिसे सदैव विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार का विरोध, समाज का विरोध, आलोचकों का विरोध, साथियों का विरोध और प्रकाशकों का विरोध निराला को जीवन पर्यंत झेलना पड़ा। उनकी यही पीड़ा इन शब्दों में मुखरित हुई है। क्वेश्चन 2, शक्ति की मौलिक कल्पना का निहितार्थ क्या है? रावण ने जिस शक्ति की पूजा कर उसे अपने वशीभूत किया था वह तामसी शक्ति था, जबकि राम ने जिस शक्ति का साधना जामवंत के सुझाव पर कि वह शक्ति का सात्विक रूप था, तामसिक शक्ति की सहायता से दुष्ट व्यक्ति अन्याय अत्याचार करते हैं, जबकि सात्विक शक्ति से सज्जन उस अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करते हैं। जामवंत का यह कहना कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना का निहितार्थ यह है कि शक्ति के हर युग में मौलिक कल्पना होती है, उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने अंग्रेजों की शक्ति का मुकाबला सत्याग्रह अहिंसा की शक्ति से किया, किंतु ये अस्त्र पर हर जगह कारगर हो ही जाए यह आवश्यकता आवश्यक तो नहीं। अतः हर युग में हर व्यक्ति को शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है। अन्याय एवं अत्याचार का विरोध जब व्यक्तिगत स्तर पर करना संभव नहीं होता, तब संगठित होकर संगठन शक्ति के बल पर किया जाता है। Question 3। राम की शक्ति पूजा की उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनसे राम के हृदय में आशा और उत्साह का संचार सीता के स्मृति मात्र से हो गया है। रावण को पराजित न कर पाने से राम अत्यंत निराश हैं, उनका मन हताश है और रह रहकर रावण की विजय की आशंका उन्हें दुखी कर देती है। निराशा के इन क्षणों में उन्हें सीता की वह छवि स्मरण हो आई जो उन्होंने जनक वाटिका में देखी थी और उनका मन पुनः उत्साह से भर गया। राम की शक्ति पूजा में इसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। ऐसा क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। Question 4। छायावादी नारी का जो स्वरूप राम की शक्ति पूजा में चित्रित है उसका उल्लेख कीजिए। छायावाद में नारी को पुरुष के प्रेरक शक्ति प्रेरणा का पावन उत्स माना गया है। वे हताशा निराशा को दूर करने वाली ऐसी संजीवनी है जो अपने सौंदर्य प्रेम से मन में आशा जगाती है तथा उत्साह का संचार करती है। जनक नंदनी सीता की वह छवि जो राम ने जनक वाटिका में देखी थी जब उनके स्मृति पटल पर जागृत हुई तो राम की सारी निराशा दूर हो गई और वे आशा एवं उत्साह से भर गए। स्पष्ट है कि हताशा एवं अवसाद के क्षणों में हमें अपने जीवन के सुखद प्रसंगों का स्मरण करना चाहिए। Question 5। देवी ने राम की परीक्षा किस प्रकार ली और राम ने किस प्रकार इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की? आंसर, राम शक्ति की पूजा कर रहे थे। पूजा के उपरांत देवी पर एक इंदी वर अर्थात नील कमल चढ़ा देते थे। जब उनका अनुष्ठान पूरा होने वाला था और केवल एक नील कमल शेष था तभी देवी हंसती हुई पूजा का नील कमल उठा ले गई। कमल न पाकर राम को लगा कि अब अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकेगा, वे अपने को धिक्कारने लगे। तभी स्मरण हो आया कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी, अभी तो उनके पास नेत्र रूपी कमल शेष है। तुरंत ही उन्होंने अपना एक नेत्र कमल चढ़ाने का निश्चय कर बाण से उसे निकालने का संकल्प किया। तभी देवी प्रकट हो गई और राम को विजय श्री का वरदान प्रदान किया।